मेरे आत्मीय युवा मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 8 सितंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शुभम कुमार तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से, शुभम सिंह दोहरे इटावा उत्तर प्रदेश से, कैलाश बिसेन बालाघाट मध्य प्रदेश, राजेंद्र यादव मऊ उत्तर प्रदेश, बिंदु जौनपुर उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार जालोर राजस्थान, रवि गहलोत सुमेरपुर राजस्थान और ऋतिक गहलोत सुमेरपुर राजस्थान। तो शुभम कुमार, शुभम सिंह, कैलाश, राजेंद्र, बिंदु, प्रदीप, रवि और ऋतिक, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना इस मायने में है कि आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, खासकर अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी वाकई में बहुत सिंसियरली कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एकेडमी ने कल एक यूट्यूब पर मेरा वीडियो डाला है जो लगभग 14 मिनट का है और वह वीडियो इस टॉपिक पर है कि स्टूडेंट्स को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं नोट्स कैसे बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, लगातार आप लोगों के मेल आते रहते हैं, क्लासेस भी जब होती हैं तो स्टूडेंट्स इस पर प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उन सब की इस जरूरत को ध्यान में रखकर यह वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है। आप सब जिनको भी थोड़ी सी जिज्ञासा हो इस तथ्य को जानने की, वह यूट्यूब पर जाकर यह प्रोग्राम देख सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि जब यहां 15 दिन की क्लासेज होती हैं और 15 दिन की क्लासेज में जब स्टूडेंट आते हैं तो इन्हीं बातों का खुलासा फिर बहुत विस्तार के साथ किया जाता है और डेफिनेटली जब आमने सामने बात होती है मित्रों तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है और इसका अनुभव आप सबको होगा ही। तो इसलिए आप ये न समझें कि यूट्यूब एक तरीके से क्लास का विकल्प है, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और सच पूछे तो अपनी अपनी आवश्यकताएं भी हैं, डेफिनेटली उनके लिए मुझे लगता है कि यह 14 मिनट का जो कह लीजिए कि व्याख्यान ही कह लीजिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहां तक कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं, प्लीज वो ये ना सोचें कि अब इसे क्या सुनने का मतलब है, हम तो क्लास में जा रहे हैं, आप भी इसे सुने क्योंकि ये सब ऐसे विषय हैं जिन्हें आप जितनी बार सुनेंगे आप देखेंगे कि आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी और उसके नए नए अर्थ भी निकलते चले जाएंगे। तो मित्रों, आज आपको मालूम है कि फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं कुछ दूसरी सूचनाएं भी आपको देता हूं। तो फ्रेंड्स, शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, आप जानते हैं, लेकिन कल शनिवार को आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी। साथ ही आपको योजना और कुरुक्षेत्र, योजना हिंदी इंग्लिश और कुरुक्षेत्र हिंदी इंग्लिश, इन चारों मैगजीन्स के एक एक आर्टिकल यानी कि टोटल 4 आर्टिकल्स आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और साथ ही साथ एक वीकली क्वेश्चन भी, एक साप्ताहिक प्रश्न दिया जाता है जो मेंस के पैटर्न पर होता है और खासकर उसकी बुनावट ही मेंस के पैटर्न की नहीं होती और सच पूछे तो उसका जो विषय भी लिया जाता है कोशिश होती है कि मेंस के संभावना पर आधारित। और साथ ही फ्रेंड्स, हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछला जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया था उनको इमोशनल इंटेलिजेंस पर दिया गया था, आप लोगों को क्लास स्टूडेंट के लिए है ध्यान होगा, उसी का सेकेंड पार्ट अब उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इस टॉपिक पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ हो सके। और वैसे भी ये जो टॉपिक है ये केवल सिविल सर्विस से ही जुड़ा हुआ नहीं है, हम सबकी जिंदगियों से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। मित्रों, जहां तक मुख्य विषय का सवाल है, आज हम रोहिंग्या मुसलमान पर थोड़ी सी बातें करेंगे। ये क्या है, क्या समस्या है, भारत का किस तरीके से इससे संबंध है, इसको लेकर के कुछ बातें हम आज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम न्यूज पर आते हैं, रेडियो न्यूज और दूरदर्शन की न्यूज। फ्रेंड्स, सच पूछे तो आज न्यूज के को बेस बनाकर बात करने के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। सच बताऊं तो कुछ भी विशेष नहीं है। प्रधानमंत्री अपने चीन की यात्रा, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने, और इसके बाद म्यांमार की यात्रा के बाद देश लौट आए हैं, और उनकी एक रिपोर्ट जैसी कि क्या क्या उपलब्धियां रही, थोड़ी सी इस तरह की बातें आपने न्यूज में सुनी। लेकिन इन टॉपिक पर हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि म्यांमार वाले पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से बातें नहीं की थी, उसको आधार बना करके ही मैंने आज रोहिंग्या मुसलमान वाला विषय चुना है, तो उसमें थोड़ी सी बातें हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि जो आपका प्री एग्जाम और मेन एग्जाम है, देखिए टॉपिक तो एक ही होता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट होता है। जानते हैं कि प्री में आप ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मेंस में एनालिटिकल है, राइट। तो जब हम उसी टॉपिक पर प्री के लिए तैयारी करते हैं तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं, और जब मेंस के लिए तैयारी करते हैं तब चीजें एकदम बदल जाती हैं, फिर थोड़ी नहीं बदलती, फिर एकदम बदल जाती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री की अभी जो म्यांमार यात्रा थी, म्यांमार यात्रा में देखिए प्री के लिए आप क्या क्या तथ्य निकाल सकेंगे ये अलग बात होगा, लेकिन मेंस के लिए क्या तथ्य होंगे वो दूसरी एकदम अलग बात होगी। जैसे सामान्य तौर पर आप कह लीजिए कि जब हम प्री के लिए सोचेंगे तो प्रधानमंत्री जी बहादुर शाह जफर के मकबरे पर गए, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, है ना। अब बहादुर शाह जफर चर्चा में आ गए, अखबारों में आ रहा है, न्यूज में भी आ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, राइट। तो अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो मकबरा है बहादुर शाह जफर जी का वो कहां है, राइट। अब आप इसको थोड़ा सा ढूंढिएगा, मैं बताने नहीं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ी सी मेहनत तो करें ताकि आपकी मेहनत की आदत पड़े, है ना। आप देखिए कि मकबरा कहां है, फिर आप यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि भाई बहादुर शाह जफर तो अंतिम मुगल सम्राट थे, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का उनको सिरमौर बनाया गया था, तो फिर वो वर्मा कैसे पहुंच गए, म्यांमार कैसे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, ये आप थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। फिर थोड़ा सा बहादुर शाह जफर के बारे में भी जानिए कि ये क्या थे, किस तरह के थे। आप मुझे लगता है कि इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि वो बड़े अच्छे शायर थे, दो गज जमीन मिली कुएं यार में ये उन्होंने लिखा है। तो थोड़ा सा बहादुर शाह जफर पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये प्री की तैयारी होगी। देखिए मेंस में बहादुर शाह जफर पर कुछ नहीं पूछा जाएगा, मेंस में जो पूछा जाएगा वो फिर भारत और म्यांमार के संबंधों के बारे में पूछा जाएगा, क्या वर्तमान संबंध है, क्या उनमें टर्निंग प्वाइंट है, किस तरीके चल रहे हैं, वो मेंस का हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो उसमें से आप प्री और मेंस की तैयारी के लिए अलग अलग तरीके से तथ्य अगर निकाल सकेंगे तो मैं समझता हूं कि वो सबसे अधिक परफेक्ट प्रिपरेशन होगी, साइंटिफिक प्रिपरेशन होगी, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होगी। और सच पूछे तो मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से इसी में थोड़ी सी आप सबकी मदद करने की कोशिश दोस्तों करता हूं। सच पूछे तो न्यूज में और कोई खास ऐसी बात नहीं है। तो मैं आज थोड़े से एक दो टॉपिक न्यूज़पेपर से लेता हूं, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने गौरी लंकेश की जो हत्या की गई है उस पर थोड़ी सी हम लोगों ने बातें की थी, और मैंने एक तो आपको एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किए थे। आज मैं और आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। ये जो है एक तरीके से कह लीजिए कि अलग तरीके का मामला है। अलग तरीके का मामला इस मायने में कि एक कहीं ना कहीं सहिष्णुता असहिष्णुता या जो एक वैचारिक जो द्वंद्व होते हैं, वैचारिक जो विभेद होते हैं, उनको लेकर के आप कह लीजिए कि पैदा हुआ मामला है, इश्यू है। हर युग में आप देखेंगे कि दो तरह की शक्तियों में आपस में टकराव होते हैं। नंबर एक जिसे हम रिएक्शनरी थॉट्स कहते हैं या प्रतिक्रियावादी शक्तियां कहते हैं, है ना, प्रतिक्रियावादी शक्तियां, और दूसरी होती है प्रगतिशील शक्तियां जिन्हें हम प्रोग्रेसिव थॉट्स कहते हैं। इनमें लगातार टकराव होता रहता है। अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं तो आप कह दीजिए कि जो ब्राह्मण धर्म था और इसके बाद जो बौद्ध दर्शन आया, इन दोनों में आपस में जबरदस्त टकराव हुआ। होता क्या है कि दोनों में हित के टकराव हो जाते हैं। प्रतिक्रियावादी अपनी पुरानी चीजों को लेकर के चलना चाहते हैं, जबकि जो प्रगतिशील है वो उनका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, नई चीजें आनी चाहिए, पुरानी चीजें सड़ी गली हो गई हैं, उसमें न्याय नहीं है, उसमें मानवता नहीं है, तो नई चीजें आनी चाहिए, और अगर नई चीजें आएंगी तो बट नेचुरल की जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं ये कमजोर पड़ेंगी। तो ये टकराव हमेशा चलता रहता है। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक अगर सिस्टम में रह रहे हैं तो देखिए होता क्या है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो आधारभूत तत्व है वो है विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यह संविधान में भी निहित है। तो भले ही आप उसके प्रति असहमत हो, आपको असहमत होने का पूरा अधिकार है, लेकिन विचारों की आवाज को दबा देने का, उसे नष्ट करने का, उसे भयभीत करने का अधिकार एक तरीके से न तो संवैधानिक अधिकार है, न मानवीय अधिकार है, और न ही कोई न्यायिक अधिकार है। इन अधिकारों का उल्लंघन करने की दृष्टि से ही यह घटना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और अभी राष्ट्रव्यापी चर्चा का भी यह विषय बनी हुई है। तो मित्रों, इसको लेकर के मैं कुछ आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, और आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इस पर तैयारी भी करें, क्योंकि ये एक यूं कह लीजिए कि एक समाजशास्त्र का एक हिस्सा यह है, और कला साहित्य और संस्कृति का भी हिस्सा है। क्योंकि एक तरीके से जब हम फिल्म सेंसर बोर्ड के बारे में भी इससे पहले बात कर रहे थे कि नहीं ये नहीं जाना चाहिए, ये वाक्य नहीं जाएगा, ये शब्द नहीं जाएगा, ये सीन नहीं जाएगा, तब भी आपने देखा ना कि जो एक तरीके से जो विचारों की अभिव्यक्ति है उसको दबाने की एक अलग तरीके की कोशिश थी, चाहे आप धर्म के नाम पर दबाएं, संस्कार के नाम पर दबाएं, संस्कृति के नाम पर दबाएं, अश्लीलता के नाम पर दबाएं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर दबाएं, जिसके नाम से भी दबाएं, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो जो खुली अभिव्यक्ति है उसको चुनौती दे रहे हैं, है ना। तो इस दृष्टि से आप सब इसे देखिएगा और इस पर विचार करने की भी कोशिश कीजिएगा। मित्रों, अब बहुत थोड़ा सा वक्त बच गया है, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, रोहिंग्या मुसलमान। इसके बहुत ही जो मेन बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं, और फिर मैं आपको प्रेस क्लिपिंग्स भी आज प्रोवाइड कर रहा हूं। जो रोहिंग्या मुसलमान है मित्रों, ये बेसिकली म्यांमार में रहने वाले मुस्लिम हैं जो लगभग 10 लाख की संख्या में वहां रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इन मुसलमानों को अभी भी वहां का नागरिक उस तरीके से नहीं माना जाता है, और उन्हें अधिकार उनके नहीं दिए गए कि वो कहीं भी जाएं और बड़े आराम से कहीं भी मूव कर सकें और कोई भी व्यापार कर सकें, व्यवसाय अपना सकें, ऐसा नहीं है। तो खासकर यह है कि जो म्यांमार की जो सरकार है, पहले तो देखिए वहां सैन्य सरकार थी, अब वहां डेमोक्रेटाइजेशन उसका धीरे धीरे हो रहा है। वो ये मान करके चलते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये आतंकवादी ग्रुप है, इंसर्जेंसी वाला ग्रुप है, लगातार भीतर घात करता रहता है, सेना पर अटैक करता रहता है। कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई, कुछ थाने वगैरह जला दिए गए, तो फिर सेना ने उन पर एक तरीके से अटैक किया, और उससे घबरा करके लगभग कहा जाता है कि लगभग 3-4 सप्ताह पहले की बात है जब से घटना घटी है कि 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में चले गए हैं अपने को बचाने के लिए, जंगलों में भटकते हुए किसी तरह से बांग्लादेश पहुंचे हैं। और इससे पहले से लेकर अभी तक भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। अब आप देखेंगे ना, हमारा बॉर्डर ही है बांग्लादेश, तो बिल्कुल आप नक्शे में उठा करके देखेंगे तो बर्मा से बिल्कुल, आप सर बर्मा ही कह लीजिए, निकल जाता है हम लोगों के मुंह से, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में बर्मा ही नाम इसका पढ़ा है, तो वहां से बिल्कुल सटा हुआ है। तो बांग्लादेश चले गए और फिर वो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए फिर अब दो हमारे देश में फैल गए हैं। तो अभी हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनको जो एक तरीके से अवैध शरणार्थी हैं और इनको भारत से निकालना होगा, क्योंकि भारत का भी ये थोड़ा बहुत मानना है कि ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट हैं, वहां जो इंसर्जेंसी की जो घटनाएं होती हैं उनमें इनका हाथ होता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा कि वहां कुछ ऐसे समूह हैं, तरह से आतंकवादी समूह है, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर जब उन पर दबाव पड़ता है तो वो भाग करके फिर म्यांमार में चले जाते हैं, वहां के जंगलों में शरण ले लेते हैं। तो भारत भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के थोड़ा बहुत परेशान है, राइट। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी म्यांमार गए तो अब एक अलग तरीके का धर्म संकट सा पैदा हुआ, और ये डिप्लोमेटिक चीज यही होती है। अब यह है कि अगर हम रोहिंग्या मुसलमान का समर्थन करते हैं तो म्यांमार नाराज हो जाएगा। हम समर्थन इसलिए भी सीधे सीधे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहां भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। आप देखिए कि जो शरणार्थी आते हैं तो शरणार्थियों के आने से दूसरे तरह के दबाव पड़ते हैं। आपको मालूम है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना उस समय बहुत से शरणार्थी भारत में आए, उनको लेकर के फिर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। इससे पहले तिब्बती भी आए, तो भारत में तो आते रहे हैं, तो जब वो आते हैं तो यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक में घुलना मिलना, फिर उनके नागरिक अधिकार, फिर वोटिंग, ये ढेर सारे संकट पैदा होते हैं और सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो अगर मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर के चलेंगे तो ये लगेगा कि भाई वो शरणार्थी हैं और उन्हें शरण देना चाहिए। इसके बारे में बकायदे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक वो कह लीजिए कि कन्वेंशन भी है, लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 1951 में ये कानून बना था कि अगर कोई भी इस तरह से परेशान होकर के शरणार्थी आपके यहां आता है तो आप उसे मानवता के आधार पर शरण दीजिए, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। और शरणार्थियों के लिए हमारे यहां इंटरनल अपने देश का भी कोई ऐसा कानून नहीं है, राइट। दूसरी चीज है कि अगर हम बर्मा को नाराज करते हैं तो चीन बर्मा के काफी नजदीक आ जाएगा, क्योंकि चीन इस लगातार कोशिश में है। तो भारत के लिए एक बहुत ही आप कह लीजिए कि संवेदनशील मामला था कि वो क्या करे। तो दोस्तों उस समय ऐसे पृष्ठभूमि में हमारा ये स्टेटमेंट आया है और अब आप हम देखते हैं कि आगे इस बारे में क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन भारत ने स्टेटमेंट दे दिया है कि वो हमारे यहां अवैध शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। और आपको यह भी मालूम है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो 11 समझौते हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें भारत ने खासकर ये आश्वस्त किया है म्यांमार को कि वहां जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम मजबूत करेंगे, और साथ ही साथ वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, इनमें भी भारत मदद करेगा। तो अब आप देखिए इसे सीधे आप कह सकते हैं ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि हम सीधे सीधे मदद करेंगे। तो मित्रों ये थोड़ी सी बातें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं। बाकी तो फिर आप जब अखबारों में और एडिटोरियल कमेंट्स और दूसरी जगहों पर जब इन बातों के बारे में पढ़ेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स जहां तक अब न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। अंत में ईमेल लिखने वाले अपने सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: भवानी सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान से, ऐश्वर्य रणदिवे, सीमा पांडे, सूर्यमणि शास्त्री, विकास कुमार गुरुग्राम हरियाणा से, रूपेश शर्मा जयपुर राजस्थान से, इलियास क्वाद्री, अलका यादव और रोहित चौधरी फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों कल शनिवार है, इसके बाद रविवार है। मेरी शुभकामनाएं कि आपके ये दो दिन बड़े खुशनुमा तरीके से व्यतीत हों। सोमवार को फिर मुलाकात होगी और आगे हम फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।